हमसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो इतना छोटा हो ये हमें हो सकता है और जो हमसे बहुत छोटा है क्या उससे हमें भगवान हो सकता है। ये तो मैं सिर्फ विनोद में कहा करता हूं कि भैया तुम क्यों परेशान होते हो, भगवान को तो हमसे और आपसे लिया पड़ेगा। क्यों तो दूसरे भगवान दारू वाले विचार निकलेंगे हम पूछते हमसे तो दूसरा भगवान हो जाएगा जिसके साथ जाकर भगवान मिलेगा बैठेगा। अगर ईश्वर को मिलना होगा तो जीव से मिलना होगा आत्मा नहीं। ईश्वर से खेलने के लिए दूसरा ईश्वर नहीं होगा। ये हो सकता है कि जीव ईश्वर से विमुख होकर दूसरे जीव के साथ खेल सके या ध्यान दीजिए ये हो सकता है उनके साथ होता है। लेकिन ईश्वर ने मुझे कमजोर नहीं समझो कि ईश्वर जीव के अतिरिक्त किसी और के साथ खेल नहीं सकता, किसी और के साथ रो नहीं सकता, उसे और कोई साथी नहीं मिल सकता। ये है आस्तिक दर्शन। इसलिए मेरे भाई मानव जीवन बड़े ही महत्व का जीवन है। आप जीव होकर प्रभु को रस दे सकते हैं, व्यक्ति होकर समाज को प्रसन्नता दे सकते हैं। इसमें मेरा एकमात्र संबंध संदेह की बात नहीं है। किंतु कब जब आप ये सोचें कि हमें व्यक्ति होकर समाज को देना है समाज को लेना नहीं है। लेकिन आप सोचो कि व्यक्ति होकर हमें समाज को लेना है सब मानवता समाप्त, मानवता समाप्त। मानवता वहीं से आरंभ होती है कि जहां लेने की बात ही नहीं आती और केवल देने में देने की बात आती। तो भाई मेरे मानवता का अर्थ है देना। क्या देना, क्या देना जो है तो सब बोले कुछ अपने लिए नहीं, बोले अपने लिए जब तक मालूम होता है तो चाहिए तब तक तो मानवता का आरंभ नहीं हुआ। आज क्या कारण है कि ईश्वरवादी का मन ईश्वर में नहीं लगा, आज क्या कारण है कि अध्यात्मवादी के मन का नाश नहीं हुआ, या आज क्या कारण है कि भौतिकवादी का जीवन दुष्ट प्रेम से कल्पन नहीं हुआ। केवल एक यही कारण है कि हम ये सोचने लगे भौतिकवाद की दृष्टि से ये सोचने लगे कि जगत से कुछ मिलने वाली चीज है, अध्यात्मवाद की दृष्टि सोचने लगे कि भविष्य में कुछ होने वाली चीज है, और आस्तिकवाद की दृष्टि सोचने लगे कि प्रभु से कुछ लेना है। ये मानवता नहीं है। मानवता ने हमें बताया कि भाई जगत से हमें कुछ भी नहीं लेना है, जगत की धरोहर जो हमारे पास है वो प्यार पूर्वक आदर पूर्वक नम्रता के साथ भेंट कर देना है। ये तो हमारे और जगत के बीच की बात है। और भाई जब हमारे और जगत के बीच की बात निर्णय हो जाती है वहीं से देखिए भौतिक दर्शन की जहां पराकाष्ठा है अध्यात्म दर्शन का वहां आरंभ है। आप कहेंगे कैसे भौतिक दर्शन की पराकाष्ठा क्या है? मिली हुई वस्तु, मिली हुई सामर्थ्य, मिली हुई योग्यता को भेंट कर देना किसको, जिसको मिली है उसको। तो भाई जो कुछ मिला था वो तो भेंट कर दिया, फिर क्या हो गया अकेले रह गए। जब भेंट करने के बाद भेंट करता रहेगा नहीं, तो ये जो अकेले रह जाने में जो रस है उसी रस का नाम स्वाधीनता है, उसी रस का नाम अमरत्व है, और यही अध्यात्म दर्शन है, यही अध्यात्म दर्शन है। किंतु जिसे स्वाधीनता में भी संतोष नहीं होता उसके लिए आस्तिक दर्शन है। और आस्तिक दर्शन का अर्थ क्या है? आस्तिक दर्शन का अर्थ क्या है कि सुने हुए प्रभु अविचल श्रद्धा, इसके अतिरिक्त और आस्तिकता कुछ नहीं। जाने हुए में नहीं, प्रमाण से जो शुद्ध है उसमें नहीं। क्यों? क्यों कि जाने हुए में श्रद्धा की जरूरत ही नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती? कि अगर जाना हुआ असत्य है तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी, और यदि जाना हुआ सत्य है तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो मृत्यु और प्राप्ति में श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है। तो श्रद्धा किसमें होती है? जो किसी प्रमाण से सिद्ध हो, मृत्यु में तो साक्षी वाले नहीं, कोई प्रमाण जिसके लिए हो अथवा न हो, कोई साक्षी जिसके लिए हो अथवा न हो, तो बिना ही प्रमाण से बिना ही साक्षी से यदि हम सुने हुए में श्रद्धा कर लेते हो, इसका नाम होता है आस्था। करी आस्था क्या है? जो जिसमें आस्था भी आस्था है, फिर उसकी आस्था करनी कि प्रभु हुए कहां हुए कैसे हुए तुम्हें मिले, तुम्हें हम नहीं जानते कहां है कैसे हो, पर हो ये मानते हो, बोले क्यों मानते हो? ये हमारी बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है, तुम क्यों मानते हो? पर मानते हो, बोले देखो अगर तुम प्रभु को न मानो तो अभी तुम्हारी सदगति हो जाए, अगर मानोगे तो दुर्गति होगी। बोले प्रभु को मान करके दुर्गति हमें अभी है, और प्रभु को न मान करके हमें सदगति अवश्य है। ये क्या है? ये आस्तिकता है, आस्तिकता। बोले भाई तो प्रभु के मानने मात्र से तुम्हारा क्या काम करेगा? बोले भाई प्रभु के मानने मात्र से हमारे सब काम पूरे हो गए। क्यों क्यों पूरे हो गए? कि इसलिए पूरे हो गए कि जब हमने प्रभु की सत्ता को मान लिया है तो ये नियम है कि जिसकी सत्ता स्वीकार कर ली जाती है उसमें विश्वास हो जाता है, और जिसमें विश्वास हो जाता है उससे संबंध हो जाता है, और जिससे संबंध हो जाता है उसकी मधुर स्मृति उदय होती है, और जिसकी स्मृति उदय होती है वो स्मृति उसको रस देती है जिसकी वो स्मृति है। तो सोचा मेरे भाई जब तुम्हारे जीवन से प्रभु को रस नहीं लगा, अपने क्या लेना बाकी है? अपने क्या लेना बाकी है? लेकिन आपकी दशा क्या है? आपकी दशा क्या है कि ईश्वरवाद का उपयोग होता है मोक्ष में और भोग में, मोक्ष में और भोग में। जो प्रभु को मानेंगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और प्रभु को मानेंगे तो हमारी गंती कृपा से कामना पूरी हो जाएगी। तो ये जो भोगवाद और मोक्षवाद क्या ईश्वरवाद है ये बचाव करो। तो मानवता की दृष्टि में जब हम सोचते हैं तब ये मालूम होता है कि अगर हमने प्रभु की सत्ता स्वीकार की है तो प्रभु को रस बिंदु चाहिए, और अगर अपनी सत्ता स्वीकार की है तो स्वाधीन रहने के लिए, और ये जगत की सत्ता स्वीकार की है तो सेवा करने के लिए। ये क्या है? ये मानवता। इस मानवता के बिना क्या आस्तिकवादी का आस्तिकवादी की जो आस्तिकता है वो जीवन हो सकती है? इस मानवता के बिना जो अध्यात्मवादी का अध्यात्म है वो जीवन हो सकता है? इस मानवता के बिना जो भौतिकवादी का भौतिकता है क्या वो जीवन हो सकती है? कदा नहीं हो सकती। इसीलिए ये निर्वाह सिद्ध हो जाता है कि मानवता में पूर्णता नहीं होते। क्यों का मेरा तात्पर्य था कि वो मानवता जो कि हम सबको प्राप्त है, जो जिसका हमारे राष्ट्र जीवन से विभाजन हो नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूं किस भाई और किस बहन के जीवन में भाग शक्ति नहीं, किस भाई और किस बहन के जीवन में विवेक शक्ति नहीं है, किस भाई और किस बहन के जीवन में क्रिया शक्ति नहीं है? जब आपके पास क्रिया शक्ति है, जब आपके पास विवेक शक्ति है, जब आपके पास भाग शक्ति है, तो भाव शक्ति के द्वारा क्या हम प्रभु में आत्मीयता नहीं कर सकते? विवेक शक्ति के द्वारा क्या हम असंग नहीं हो सकते? और क्रिया शक्ति के द्वारा क्या हम वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। कुछ न करना और सही करना, कुछ न करना और सही करना, इन दोनों का फल एक है। अगर आप ये कहते हो हम कुछ नहीं कर सकते तो सरकार बुराई भी नहीं कर सकते, और कोई कहो हम बुराई कर सकते हैं भलाई नहीं कर सकते,
तो ये कहना है तो होगा कि हम बुराई करना चाहते हो भलाई नहीं करना चाहते। तो भाव जब हम नहीं करना चाहते तब उसका अर्थ ये तो नहीं होता कि हम नहीं कर सकते। इसलिए भाई क्रिया शक्ति के सदुपयोग के द्वारा हम परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं और विवेक शक्ति के द्वारा वर्तमान में ही प्रत्येक भावी प्रत्येक नहीं मुक्त हो सकते हैं। मरने के बाद नहीं, धीरे धीरे नहीं, चिंतन के बाद नहीं, ध्यान भावना के बाद नहीं, अभी अभी और भाव शक्ति के द्वारा प्रभु की आत्मीयता प्राप्त हो सकती है। आप कहेंगे कि प्रभु की आत्मीयता हमें प्राप्त हुई, प्रभु को नहीं प्राप्त हुआ। अरे मेरे भाई, प्रभु तो कभी अप्राप्त था ही नहीं, प्रभु कभी अप्राप्त नहीं था, प्रभु की आत्मीयता ही अप्राप्त थी। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वरवाद की दृष्टि से क्या कोई ईश्वरवादी ऐसा हो जो ये मानो कि प्रभु से देश काल की दूरी है? मैंने तो आपको सुना नहीं। अगर यहाँ जो लोग बैठे हैं कोई ईश्वरवादी ऐसा हो जो कहे कि हाँ ईश्वर देश काल की दूरी है, तो संकी नीति के अनुसार मैं दूसरी बात मान लेता हूँ। लेकिन मेरे को संदेह कोई विकल्प नहीं करता क्यों? अरे जब वो स्वयं झूठ बात सुन लेते हैं तो नहीं कैसे उसकी तो प्रभु का मेरा तात्पर्य है कि प्रभु अप्राप्त नहीं हुआ, चाहे वो निर्विशेष हो उसको अप्राप्त नहीं हुआ, सब विशेष हो उसको अप्राप्त नहीं हुआ, श्याम सुंदर के रूप में हो तो अप्राप्त नहीं हुआ, राघवेंद्र के रूप में हो तो अप्राप्त नहीं हुआ, सदाशिव के रूप में हो तो अप्राप्त नहीं हुआ, शक्ति के रूप में हो तो अप्राप्त नहीं हुआ, चारों किस रूप में हो अप्राप्त नहीं हुआ, अरूप हो तो अप्राप्त नहीं हुआ। प्रभु आज तक किसी को अप्राप्त नहीं हुआ, तो अप्राप्त क्या हो गई कि आज उस प्रभु ने आस्तिक की आस्तिकवादियों की आत्मीयता प्राप्त हो गई। और जब आत्मीयता प्राप्त हो गई तो प्रियता का जन्म कैसे हो? प्रियता का जन्म कैसे हो? बड़े बड़े ही आश्चर्य की बात ये लगती है कि आज लोग प्रियता के लिए विश्वास को नापना तो अभ्यास को अपनाते हैं। कोई तो अभ्यासी नाराज न हो जाए, दुखी न हो जाए, मेरे को नहीं कहते अभ्यास छोड़ दो। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करता हूं कि प्रियता आत्मीयता की जो प्रियता आत्मीयता से उदित होती है यह अभ्यास से। अगर अभ्यास से प्रियता उदित होती है तो अखंड हो सकती है, और आत्मीयता विश्वास से प्राप्त होती है या अभ्यास से। सभी को यह मानना होगा कि आत्मीयता प्राप्त होती है विश्वास से, अभ्यास से नहीं। और प्रियता उदय होती है आत्मीयता से, अभ्यास से नहीं। फिर से आज हम इस रहस्य पर विचार नहीं करते। और जो जो भोग प्राप्ति का कानून था कि जब कुछ करोगे तब कुछ मिलेगा, और जब कुछ करोगे तब कुछ मिलेगा, लेकिन सुनोगा सुनेगा रखो की बाकी में जब कुछ करते हो तब कुछ मिलता है, लेकिन सुनने से जो कुछ मिलता है क्या वो अपने आप नहीं सुनता? जो सुनता नहीं है तो क्या तुमको ऐसा प्रेमी चाहिए जो अपने आप सुन लो? और ऐसा प्रेमी तो किसी को चाहिए नहीं। तो प्रेम का मेरा तात्पर्य है भाई, करने का जीवन में स्थान था केवल करने का राग मिटाने के लिए। करने का जीवन में स्थान है केवल करने का राग मिटाने के लिए। अपना राग मिटाना किसी लिए? कि जो होना चाहिए उसके होने के लिए। करने का राग मिटाया जाता है जो होना चाहिए उसके होने के लिए। तो क्या होना चाहिए? कि प्रीत होना चाहिए, कि बोध होना चाहिए, कि लोभ होना चाहिए, कि कर्तव्य होना चाहिए। होना चाहिए जो होना चाहिए उसके होने के लिए करने के राग का नाश किया जाता है, और करने के राग का नाश करने के लिए कर्तव्य की बात कही जाती है। कही जाती है तात्पर्य क्या निकला? कि कर्तव्य पालन करने से राग मिटाने का साधन है। जैसे किसी पूछो भाई क्या कर्तव्य है, वक्ता का क्या कर्तव्य है? कि मीठा बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, और श्रोता बोले पूरी शक्ति लगाकर ईमानदारी से सुने। ये जो सत्य बोलने की जो बात आई ये किसके लिए आई? ये झूठ बोलता है उसके लिए, किसने कभी झूठ न बोला उसके लिए? कैसे तो प्रिय बोलने की जो बात आई किसके लिए आई? जो सत्य बोलता है उसके लिए, जिसने कभी सत्य बोला उसके लिए? हितकर बोलने की बात आई किसके लिए? जिसने हितकर बोला हो। अरे दान देने की बात आई किसके लिए? जिसने संग्रह किया हो। मैं सोचता हूँ आपको, अरे जिसने संग्रह नहीं किया उसके सामने भी दान देने की बात आती हो? अरे भैया जिसने पाप किया हो उसे पराजित करना पड़ता है। हम झूठ बोले तो सत्य बोलना पड़ेगा, अगर हमने सत्य बोला हो तो मगर बोलना पड़ेगा, अगर किसी का बुरा चाहा हो तो भला चाहना पड़ेगा। क्यों बनेगा तात्पर्य? ये जो कर्म करने की बात कही जाती है ये तो गलत करने की आदत मिटाने के लिए कही जाती है, लेकिन जिस समय हम सही करने लगते हैं उसके दो फल बनते हैं सही करने के। एक फल तो ये बनता है कि सही करते ही सुंदर समाज का निर्माण होने लगता है। अपने आप ये पहचान है कर्तव्य की। इसी में हमेशा कहता हूं कि जिस देश में कर्तव्य में सुकराने रहते हैं, जिस जाति में कर्तव्य में सुकराने होते हैं, जिस समाज में कर्तव्य में सुकराने होते हैं, उस समाज को राष्ट्र की आवश्यकता नहीं होती। और जिस समाज को राष्ट्र की आवश्यकता रहती है उस समाज में कर्तव्य निष्ठ प्राणियों का अभाव रहता है। आप कहेंगे बलवाचर की बात, क्योंकि आप कोई कर्तव्य निष्ठ नहीं हो भाई। सलमान से मैं कर्तव्य निष्ठ होते तो राष्ट्र की क्या जरूरत बताओ? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप बल का दुरुपयोग न करें तो कैसी नहीं करोगी? अगर आप अपनी सास कष्ट के लिए धन न दे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोलना पड़ता? मैं आपसे पूछता हूं, कभी नहीं खोलना पड़ता। तो जहां अकर्तव्य होता है वहां शासन आता है जीवन में, और जहां कर्तव्य होता है वहां शासन से मुक्ति मिलती है। आज हमारा कुटुंबी जनों से शासित, पड़ोसियों से शासित, राष्ट्र से शासित, धर्म कर्म से शासित, मतलब क्या? अकर्तव्य अकर्तव्य अकर्तव्य। तो ये जो आज जीवन में स्वाधीनता नहीं है, क्यों नहीं करता जब तक अपने ऊपर कोई शासन न करे? ये पराधीनता केवल इसी जीवन में है कि हमने कर्तव्य परायणता को नहीं अपनाया, अर्थात मिले हुए का सदुपयोग नहीं किया। तो जब तक हम मिले हुए का सदुपयोग नहीं करेंगे शासित रहेंगे, हमारे ऊपर दूसरों का शासन रहेगा नहीं मिल सकता। पद्धति बदल सकते हैं, शासन नहीं बदल सकते। चाहे रानी के पेट से राजा का सुशासित होगा और चाहे प्रिया के पेट से निकले हो और प्रेम मिनिस्टर से शासित होगा, चाहे मजदूर के पेट से निकला हुआ सुखी तुम पर शासन करो और चाहे सेठानी के पेट से निकला हुआ शोक तुम पर शासन करो। अरे भाई जब तक कर्तव्य परायणता नहीं होगी तब तक शासन से मुक्ति नहीं हो सकती, और जब तक शासन से मुक्ति नहीं होगी तब तक मानवता कैसी? क्या वो भी मानव हो जो पशु के द्वारा सेव कर लिया हो? ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मतलब क्या? गलत करते हो उसी ये नहीं कर सकते, गलत रखते हो उसी में नहीं रख सकते। तो भाई अकर्तव्य से रहते ही हम पर दूसरों का शासन रहेगा, मिट नहीं सकता। और कर्तव्य पालन करते ही हम शासन रहित हो जाएंगे। तो क्या मनमुखी हो जाएंगे? क्या जो काम से कदर से हो जाएंगे? तो नहीं, जो करना चाहिए वो करने लगेंगे और जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। किसी का नाम है कर्तव्य निष्ठ होना। जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति न हो और जो करना चाहिए वो कुछ होने लगे। अब किसी भाई से पूछो कि बल का दुरुपयोग करना चाहिए, इतने लोगों को बता सकते हैं? आप ये चाहते हैं कि जो दूसरों को बल का दुरुपयोग करें? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो चाहते तो बताओ, तो जब आप ये चाहते हो कि बल का देखे खेल न करें, तो क्या हम तो खेल कर खेल में जिताते कि हम करें विफल करें। अगर ये चाहते हो भाई तो तुम्हारी क्या धीति है, और अगर ये चाहते हो न हम करें न कोई दूसरा करे, बड़ी सच्ची क्या, तो इसका परिचय कैसे होगा, इसका प्रचार कैसे होगा। तुम इसके प्रचार का तरीका मानव सेवा से मैंने ये बताया कि भाई हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो मगन हमारा जीवन होगा और राष्ट्र की हमें आवश्यकता में होगी। तो बल का दुरुपयोग बलपूर्वक रोकने के लिए राष्ट्र का निर्माण हुआ, और बल का दुरुपयोग लक्ष्यपूर्वक न करने के लिए आप बताने के लिए मगन कार्यक्रम हुआ। लेकिन आज राष्ट्र भी सफल और मजहब भी सफल, क्यों भाई? मानवता नहीं थी। यदि मानवता हो तो राष्ट्र भी सफल हो जाए, और यदि मानवता हो तो मजहब भी सफल हो जाए। चाहे क्यों कह लो बीच की बात, और चाहे वो कह दो कि अगर मानवता आ जाए तो न राष्ट्र की अपेक्षा रहे और न मजहब की अपेक्षा रहे। इसका आपको ये न समझ देते भाई कि मैं किसी मजहब को मानता नहीं हूं, मैं तो बड़ा खत्म हो गई हूँ, लेकिन मैं मजहब को मानता हूँ साधन का प्रतीक। मैं मजहब को ये नहीं मानता हूँ कि हम विवाद करें कि हमारा मजहब बहुत अच्छा है, लेकिन खुद चलो हमारे जीवन से इसका कोई संबंध नहीं। तुम अपनी को नहीं मानते हो, नास्तिक हो, हम इनको मानते हैं। अच्छा भैया ठीक, आप जिस ईश्वर को मानते हो तुम्हारे चित्र लग गया, बोले सोचे नहीं में लगा तो कौन नास्तिक सीख लिया। बोले तुम बहुत बड़े, तुम्हारा मगर बहुत ही छोटा है। बोले क्या कि तुम आत्मा को तो नहीं मानते? अच्छा वो तुम मानते हो ना, मरने से डरते हो क्या? तो डरते लगता है, मोह है क्या? तो मोह तो है। तो तुम आत्मा को सत्य तुम मानते हो, हम नहीं मानते। वो सोचो तो क्यों हमारा तात्पर्य है, आज हमारा मजहब हमारे जीवन से अलग दिखाई देता है। तो जो मजहब जीवन से अलग है, क्या समझते हो आपका मजहब है? वो मजहब मजहब नहीं, बाकी नहीं होता। तो मजहब तो है पर आपका मजहब नहीं है। आपका मजहब वो हो सकता है जो आपके जीवन में हो, और वो मजहब सब जीवन में से निकलेगा कि जब हम मिले हुए का सदुपयोग करें। अगर हम मिले हुए का सदुपयोग नहीं कर सकते तो हम अपने मजहब को अपने जीवन से नहीं बता सकते, और जब हम अपने मजहब को अपने जीवन से नहीं बता सकते तब क्या होगा? मजहब हो जाएगा संघर्ष का साधन, और फिर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो सकूबर उसके तब क्या होगा? आपकी दशा मजहबियों का दशा होगी। धर्म विशेष, अरे मेरे भाई जब धर्म जीवन में नहीं था तब कभी हानि नहीं थी, तब कभी हानि नहीं थी। तो क्यों ना मेरा तात्पर्य है कि मानवता की बिना सिद्धि नहीं मिल सकती, सिद्धि नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? कि मानवता ने हमें एक ही बात बताई, और वो ही बताई कि हम मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये बात बताई हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा जो होगा ही नहीं होना चाहिए, वही होगा जो होना चाहिए। और दूसरी बात क्या बताऊं कि हम विवेक का अनादर नहीं करेंगे। जब हम विवेक का अनादर नहीं करेंगे तब क्या होगा? बच्चों की वार्ता रहेगी, व्यक्तियों की वार्ता रहेगी, कामना रहेगी, विकार रहेगा, नहीं रहेगा। तो जो विवेक का अनादर नहीं करते वे निर्विकार हो जाते हैं, और जब निर्विकारता जीवन में आ जाती है, जब निर्विकारता जीवन में आ जाती है तब जो होना चाहिए वो सुख होने लगता है, जो मिलना चाहिए वो सुख मिल जाता है। इस दृष्टि से भाई बल के सदुपयोग में, विवेक के आदर में मानवता निहित है, और मानवता में पूर्णता निहित है। इसके आगे की बात अब क्या विद्यार्थन है उसमें निवेदन करने की कोशिश करेंगे। होगा क्या प्रयोजन?
मेरे नाथ।
पत्नी सुबह मई सर्व समर्थ कथित पावनी अहेत की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर सुख दुख हो जाए।
जाएगा हर्ष और निर्मलता बढ़ जाएगा। जैसे जैसे चित्त निर्मल होता है।